श्रीमद् भागवत ऊंची समझ देता है। ऊंची समझ से आपका श्वास और श्वास की रिदम ताल से चलती है, और बेकार की समझ से आपका मन बेकार के संकल्प विकल्प करता है, इसलिए आपका स्वर बेताल हो जाता है, आयुष्य क्षीण हो जाती है। ऊंची समझ से प्राण शक्ति तालबद्ध चलेगी, आपके एक मिनट में जो 14 श्वास खर्च होते हैं वो 12 और 13 पर ठहर जाएंगे, 20% आपकी आयुष्य बढ़ जाएगी। श्रीमद् भागवतम आयु आरोग्य, सही समझ होगी, आपका मन शांत रहेगा, आप निरोग रहेंगे, बुद्धि निरोग रहेगी, क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, आपका ज्ञान मजबूत रहेगा। श्रीमद् भागवतम आयु आरोग्य पुष्टिदम, ये पुष्टि देने वाला है। श्रवण करने से, पठन करने से, सुनने से श्रीमद् भागवत के श्रोता के जीवन में बहुत कुछ बढ़िया हो जाता है। आपका भाव बढ़िया हो जाएगा तो आपका तनाव टेंशन दूर चला जाएगा, और भगवत भाव की पुष्टि से आपका लक्ष्य ऊंचा हो जाएगा।
गीता का ज्ञान ऐसा है कि तुम जहाँ हो, जो तुम्हारी जाति है, जो भी तुम्हारी उम्र है, उस सब को गीता बोलती हमें स्वीकार है। केवल हमारे ज्ञान की नाव में बैठो, तुम संसार से यूं उतर जाओगे देखते देखते।
श्रीमद् भागवत राग और द्वेष को निवृत्त करता है और आपकी बुद्धि को ज्ञान बख्शने में भी मदद करता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम, ये पुण्य प्रदायक भी है, क्योंकि आप तपस्या करते, भागवत सुनते तो आपका मन के भाव ऊंचे बनते। आपके भाव ऊंचे होते हैं तो वात परिणाम ऊंचा आता है। एक गृहस्थी का गाड़ा चला रहा है और कहता है कि क्या करे, पालना पड़ता है स्नान को, खिलाना पड़ता है इन जोकों को, बेटी बेटा को, और बहन विधवा होकर आई, देना पड़ता है। उसका भाव शुद्ध नहीं है, मेहनत मजूरी तो वो भी करता है, घर का पालन पोषण करता है, गाढ़ा धकेलता है, लेकिन उससे वो पुण्य आनंद और माधुर्य नहीं मिलता है, और उनके परिवार वालों में भी उसके प्रति आदर नहीं होता। दूसरा है कि भगवान ने हमें मौका दिया है गृहस्थी की गाड़ी धकेलने का, पत्नी के रूप में भी उस हरि की सेवा है और पुत्र के रूप में भी हरि की सेवा है, बहन भी बेचारी आए खाती, कोई बात नहीं, अच्छा, तो उसके लिए वो सेवा भाव हो जाता है, तो कुटुंबियों को भी उसके प्रति प्रेम होता है, आदर होता है, सहयोग की भावना होती है। एक जगह पर कोई मकान बन रहा था, बड़ा मंदिर, मजदूर काम कर रहे थे। बाबा ने मजदूर से पूछा, क्या कर रहे हो? बोले, बाबा अपना भाग्य फूट रहे हैं, धूप में मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, मुसीबत मोल ले रहे हैं, और क्या करें, गरम गरम दिन और गरम गरम पत्थर, गरम गरम ईंटें उठा के अपने को तपा रहे, खपा रहे, क्या करे, गरीब आदमी है, सिर कूटता हुआ वो ईंट उठा रहा है। दूसरे तरफ गया, वही काम करने वाले से पूछा, क्या कर रहे? बोले, बाबा रोजी कमा रहे हैं। उसमें इतनी अशांति नहीं थी, काम दोनों एक जैसा कर रहा था। तीसरे से पूछा, बोले, क्या कर रहे? बोले, बाबा महल बनवा रहे हैं, महल बनाने में लग रहे हैं, बाबा गुजारा भी हो रहा है, महल भी बनेगा, गांव का एक शोभनीय स्थान बन रहा है। चौथा आदमी भी वही मजदूरों के साथ काम कर रहा था, बोले, क्या है? बोले, महाराज मंदिर बन रहा है, यहाँ एक बड़ा ये हॉल बनेगा, यहाँ आएंगे लोग, सत्संग करेंगे, सुनेंगे, भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने भगवान को देखा ऐसे संत तो हमको भी कभी कभार देखेंगे, सच्चा मंदिर चलता फिरता मंदिर कभी आएगा, और वो हजारों के रद बंद मंदिर खुलेंगे, ऐसा एक इमारत बन रही, आश्रम बन रहा है महाराज, हमारी तो रोजी भी चल रही है और सेवा भी हो रही महाराज, हमारा तो भाग्य खुला। काम वही का वही है, लेकिन चारों के भाव के अनुसार उनको फल मिलेगा। शबरी भीलन मतंग ऋषि के आश्रम में झाड़ू लगाती, सड़क पर माई झाड़ू लगाती, उसका लक्ष्य रुपया है, उसकी नौकरी है, माँ बहन बहू घर में झाड़ू लगाती है, वो सेवा हो जाती है, और शबरी भीलन झाड़ू लगाती मतंग ऋषि के आश्रम में, वो पूजा बन जाती है, और राम उसके हाथ के जूठे बैर खाने को तैयार हो जाते, भाव ही तो है और क्या। शबरी भीलन के बैरों में ऐसा कोई जादू था क्या? केवल भाव का जादू था। अजी कहाँ गए थे, दिखते नहीं थे इतने दिन, 15-20 दिन। बोले मैं तो गया था भगवान के धाम में रहा था, हरिद्वार में रहा था मैं तो वृंदावन में रहा था, भगवान के धाम में रहा था। तुम कहाँ गए थे देवी? मैं तो गई थी जगन्नाथ जी, भगवान के धाम में रही थी। भाई साहब तुम कहाँ गए थे, नहीं दिखते थे? बोले मैं तो द्वारिका गया था, भगवान के धाम में रहा था। तो द्वारिका भगवान का धाम, जगन्नाथ भगवान का धाम, तो ये तुम्हारा करनाल किसका धाम है? जयराम जी की। सूरज तो करनाल में भी उसी का और धरती करनाल में भी उसी की, हवाएं भी उसी की है, लेकिन वहां भाव है कि ये भगवान का धाम है और यहां भाव है कि मेरा है। इतने ही तो फर्क हो यार। आज से तुम भाव बनाने की, भाव शुद्ध रखने की कला सीख लो। ईमानदारी तो यह है कि जिसकी सत्ता से बादल बरसते हैं, जिसकी सत्ता से सूरज खेत खली को पोषता है, चांद पोषता है, तो धरती भगवान की, सूरज भगवान का, बादल भगवान के, तो कणक बनी वो किसकी? जयराम जी की, वो भी भगवान की। तो ये शरीर तुमने अपने आप बनाया कि भगवान ने बनवाया? तो शरीर बना भगवान का, तो कणक भगवान की, गेहूं और जो भोजन खाते हो वो भी भगवान का, और जिसको खिलाते हो वो भी भगवान का। तो जिस घर में तुम रह रहे हो वो किसका? बोले मिट्टी, आग और पानी, इससे ईंट बनी। तो मिट्टी अपनी नहीं है, मिट्टी भी भगवान की, पानी भी भगवान का, आग भी भगवान का, तो ईंट किसकी हुई? भगवान की हुई। तो भगवान की ईंट और धरती भी भगवान की, तो घर भी भगवान का होया कि नहीं होया? जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो आप जहां करनाल धनराल में कहीं भी रहते हो, तो भगवान के घर में रहते हो। तो ईमानदारी तो ये है, सच्चाई तो ये है कि आप भगवान की धरती पे, भगवान की ईंटों से, भगवान के सीमेंट से, भगवान के लोहे लक्कड़ से घर बने हुए, घर भगवान का है, आप भगवान के घर में रहते हो। और भगवान की सत्ता से बनी हुई चीजें आप खाते हो, और भगवान की सत्ता से उत्पन्न हुआ शरीर उसी को खिलाते हो। तो आप भगवान के घर, भगवान की सृष्टि में रहते हो, भगवान के घर में रहते हो, भगवान के शरीर में रहते हो, और भगवान की सत्ता से बनी हुई चीजें भगवान के शरीर को खिलाते हो। आपका मैं बीच में क्यों घुसे? जयराम जी की। तो अब एक काम करो, जिस चीज पर तुलसी का पत्र रख दिया जाता है वो भगवत अर्पण की जाती है चीज। बेटे की चिंता, बेटी की चिंता, शादी कब होगी, तुम कोशिश करो, चिंतन करो, चिंता मत करो। ये बेटी बेटा आपने जो अन्न खाया उससे पैदा हुए, अन्न भगवान का, तो बेटी बेटा मेरा क्यों मानू? बेटी बेटा भी भगवान का है। आप ट्रस्टी मात्र है, आप केवल कोशिश करके उनको सेट करिए, लेकिन चिंता मत करिए। कल एक काम करना, तुलसी का पत्ता लेकर अपने मकान पे रख देना, ये भगवान की चीज, भगवान को अर्पण है। कृष्ण अर्पणमस्तु, ये ईश्वर का घर है। फिर जिसको हरिद्वार में रहने का भाव आता है, आपको अपने घर में रहने का वो भाव आ जाए, ये घर भगवान का है, चलो। फिर दूसरा तुलसी का पत्ता रख दीजिए बेटी पर, ये बेटी भगवान की है। वो तीसरा पत्ता रख दीजिए बेटे पर, ये भी भगवान के है। फिर पत्नी पे भी रख दीजिए, ये भगवान की है। और पत्नी को कही है कि पति पे भी रख दे, ये भगवान के है। फिर जो रुपए पैसे है ना तिजोरी, उस पर भी एक पत्ता रख दीजिए, बोले बाबा ये नहीं करेंगे ये तो हमारा है। वो बैंक बैलेंस और तिजोरी पे एक तुलसी का पत्ता रख दीजिए कि ए ईश्वर की चीज, हम तो केवल ट्रस्टी हैं, संभालने वाले। आपका भाव बढ़िया हो जाएगा तो आपका तनाव टेंशन दूर चला जाएगा, और भगवत भाव की पुष्टि से आपका लक्ष्य ऊंचा हो जाएगा। लक्ष्य जब ऊंचा हो जाएगा, भाव ऊंचा हो जाएगा, तो आपके विचार ऊंचे हो जाएंगे। विचार ऊंचे होते ही वातावरण में जैसे आपके विचार होते, घूम फिर के आपको भी वही विचार मिलते हैं। डोंगरे महाराज एक पौराणिक कथा बताया करते थे। मैं डोंगरे महाराज की कथा में जाके बैठा था, सोता था, जैसे आप मेरे सोता है ऐसे हम उनके सोता थे। जयराम जी की एक दो बार हमने सुना था उनकी कथा। बताते थे कि एक सेठ था, नगर सेठ वो, और दूसरा एक राजा, दोनों आपस में क्लास फॉलो थे और बहुत दोस्त थे। सेठ को मुनिमों ने बताया कि अपने पास चंदन का स्टॉक बढ़ गया है और कोई खरीदार नहीं है, बाजार डाउन हो रही है, अपने को बड़ा घाटा पड़ेगा। सेठ के मन में आया कि इतना सारा चंदन का स्टॉक कैसे खलास हो। बोले मुनिमों ने कहा, राजा अगर मर जाए तो उसको जलाने के लिए चंदन खूब चाहिए, फिर तो बाजार सुधर सकती और अपने को नफा भी हो सकता है। सेठ के मन में हुआ कि राजा जल्दी मरे तो ठीक है, मेरी दुकानदारी चलेगी। उसी दिन वो सेठ राजा से मिलने गया तो राजा के मन में हुआ कि सेठ के पास तो बहुत संपत्ति है, क्या करेगा, उस पर टैक्स डाल दे, या तो राज्य में रहता है तो इसकी संपत्ति पर हमारा अधिकार है। अब दोनों के मन में बुरे विचार आने लगे। आज रोज जो मिलने में आनंद आता था, अब मिलने में आनंद चला गया। 10-5 दिन बीते, दोनों ने सोचा कि हम लोग पहले मिलते थे जो खुशी होती थी, जो आनंद आता था, वो अभी नहीं आता, क्या बात। किसी महात्मा के पास गए। महात्मा त्रिकाल ज्ञानी थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में एक दूसरे के प्रति जो सद्भाव थे, उसकी जो खुशियां थी, एक दूसरे को पोषता था सद्भाव, वो सद्भाव दुर्भाव में बदला है, इसलिए आपको आनंद नहीं आ रहा है। सेठ के बच्चे, सच बताओ तुम्हारे मन में क्या आया था। उसने सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा मेरे को मुनिमों ने कहा, मैं सोच रहा था कि राजा मर जाए तो हमारा धंधा चले। राजा से पूछा, राजा ने भी सच्ची बात बता दी। महात्मा ने कहा, है बेवकूफों के सरदार, तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि राजा दूसरा कोई महल बनाए और फर्नीचर बनवाए, राजा मर जाए और फिर मेरा बेके, इससे तो राजा और ऊंचा उठे। आप उसके लिए ऊंचा भाव करते तो उसके मन में भी आपके लिए ऊंचा भाव आता। जो आदमी को आप लोग गाली देते, यहां बहुत लोग गाली देते, वो व्यर्थ नहीं जाती है। जो आप रूठ कर किसी को बोलते, तू ऐसा है, तू नालायक है, तू बेवकूफ है, तेरा खाना खराब हो, वो उस समय लगता है कि चलो कुछ भी नहीं, हवा में चला गया, लेकिन वही संकल्प उसका पीछा करते हैं और देर सबेर उसको कोई ना कोई वो सजा देने वाला आदमी मिल जाता है। रामतीर्थ कहते, किसी आदमी ने उठाकर डंडा और किसी को मार दिया सिर पर और उसको सुला दिया सदा के लिए, तो डंडा मारने वाला कायदे की कार्रवाई में तो गुनाहगार है, खूनी है, लेकिन वो अकेले आदमी ने खून नहीं किया है। जिसका खून हुआ है उसको मर जाने की बद्दुआएं बहुतों से मिली है, उसके द्वारा वो साकार हुई है। जयराम जी की। ऐसे जो आदमी ऊंचा उठा है, उसका अपना पुरुषार्थ तो है, लेकिन उसने सबके लिए ऊंचे भाव और ऊंचे कर्म किए हैं, तो सामने से भी उसकी उन्नति के शुभ भाव आए, इसलिए वो आदमी ऊंचा उठ रहा है और चमक रहा है, महक रहा है। तो आप ऊंचे भाव करिए, आप भगवत भाव करिए। इसने मेरे को दुख दिया, उसने मेरे को दुख दिया, ये मेरा दुश्मन है, तो आप दुखी रहेंगे और दुश्मनों से घिरे रहेंगे। दुख देने वाले के प्रति भी आप सहानुभूति बरतिए कि कितनी कृपा की कि मेरे को दुख दिया, मेरे को दुख नहीं दिया, मेरी बेवकूफी बताने की कोशिश की, अथवा मैं दुखी होता हूं कि नहीं, ऐसा भगवान ने मेरे को मौका दिया। आप भगवान पर नजर क्यों नहीं डालते? दुख देकर भगवान आपकी क्षमता शक्तियां बढ़ाता है और सुख देकर भगवान आपका विषाद हटाता है, ऐसा क्यों नहीं सोचते? उसने दुख दिया, ये मेरा दुश्मन, ये इसने मेरे दुख दिया, तो तुम उसको दुख दो, वो तुमको दुख दे, दुख की सृष्टि बढ़ेगी, दुश्मनी की सृष्टि बढ़ेगी, मुसीबतें बढ़ेगी, और क्या बढ़ेगा। ये समाज में जो महामारी होती है, खूना मरकी होती है, और हमारा तुम्हारा झगड़ेबाजी होती है, घर घर में जो आग लगती है, केवल नासमझी, और क्या है। भाई भाई में जो कलह होता है वो नासमझी का फल है। देराणी जेठाणी में जो झगड़े होते हैं नासमझी का फल है। सासू बहू में जो झगड़े होते ना समझी का फल है। श्रीमद् भागवत ऊंची समझ देता है। ऊंची समझ से आपका श्वास श्वास की रिदम ताल से चलती है, और बेकार की समझ से आपका मन बेकार के संकल्प विकल्प करता है, इसलिए आपका स्वर बेताल हो जाता है, आयुष्य क्षीण हो जाती है। ऊंची समझ से प्राण शक्ति तालबद्ध चलेगी। आपके एक मिनट में जो 14 श्वास खर्च होते हैं वो 12 और 13 पर ठहर जाएंगे, 20% आपकी आयुष्य बढ़ जाएगी। श्रीमद् भागवतम आयु आरोग्य। सही समझ होगी, आपका मन शांत रहेगा, आप निरोग रहेंगे। बुद्धि निरोग रहेगी, क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, आपका ज्ञान मजबूत रहेगा। श्रीमद् भागवतम आयु आरोग्य पुष्टिदम, ये पुष्टि देने वाला है। श्रवण करने से, पठन करने से, सुनने से श्रीमद् भागवत के श्रोता के जीवन में बहुत कुछ बढ़िया हो जाता है। वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, 18,000 श्लोक तैयार हुए। गजानंद से पूछा कि प्रभु मैं तो रोज बोलता रहा और आप लिखते रहे, इतने दिनों में आपने एक शब्द भी नहीं बोला। गणपति भगवान कहते हैं कि मैं वचोगुप्ति की महिमा जानता हूं, वाणी की शक्ति जानता हूं, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अगर मैं मौन नहीं रहता तो तुम्हारा एक एक श्लोक बिल्कुल साफ सुथरा करके उसकी गलतियां छांट छूट के निकाल के इतना बढ़िया मैं नहीं लिख सकता था। इसलिए वाणी को संयम से खर्चना चाहिए, बिन उपयोगी वाणी ना बोले। जब राम जी बोलते हैं तो सार गर्भित बोलते हैं, सांत्वनाप्रद बोलते हैं, दूसरे को दुख ना हो ऐसा सोच के बोलते हैं। आप भी अगर उस श्री राम का अनुकरण करेंगे तो आपके भाइयों में, कुटुंब में, परिवार में तो सुख शांति रहेगा, आपके दिल में भी सुख शांति और आनंद और माधुर्य आ जाएगा। आई साउट यू साउट हु विल कैरी डर्ट आउट, मैं भी रानी तू भी रानी, बहुत कौन भरेगा घर का पानी। इसलिए वाणी जब बोलिए तो अपना मन शीतल हो और दूसरे सुनने वाले भी शीतल हो, ऐसी वाणी बोलिए, आपकी वाणी का जादू हो जाएगा। वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए, औरन को शीतल करे, आप हूं शीतल होए। और उस शीतलता के लिए सुबह उठिए, थोड़ा सा उठकर एक आध मिनट शरीर को बराबर खींचेगा। आप सो जाते तो आपकी इंद्रियां मन में मन, बुद्धि में बुद्धि, बुद्धि दाता जीव भाव परमात्मा में आती। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन खींचता है, छोरे रंग की पिचकारी खींचते हैं ऐसे तो उसमें कलर आता है, ऐसे ही आप शरीर को खींचेंगे तो आत्मिक शक्ति तुम्हारे शरीर में आएगी। जहां जहां शरीर में घिसाव है, कमजोरी है, उसको दूर करने के लिए उस रब की शक्ति को सुबह नींद में से उठे तो जरा खूब खींचिए। तुमने देखा होगा कि बिल्ली और कुत्ते को टाइम सर भोजन नहीं मिलता है, सोफा नहीं मिलता, मिल्क नहीं मिलता है, ब्रेड बटर टाइम सर नहीं मिलता, फिर भी और प्राणियों की अपेक्षा बिल्ली और कुत्ता कम से कम बीमार होते हैं और ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होते हैं। तुमने देखा होगा वो जब नींद में से उठते हैं ना तो शरीर को बराबर खींचते, ऐसा खींचते कि रग रग की खबर ले लेते। आप नींद में से उठे तो 2 मिनट शरीर को बराबर खींचिए, 2 मिनट ऐसा कस के खींचिए कि रग रग के मानो झड़ती ले ली तुमने, 2 मिनट शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। जहां जहां तुम्हारे शरीर में रोग होने वाला है अथवा रोग है, उसको रोग प्रतिकारक शक्ति जाकर हटाए, वो ईश्वरीय एनर्जी जाकर हटाए उसे। शरीर को बराबर 2-3 मिनट खींचिए और 2-3 मिनट ढीले छोड़ दीजिए अपने को। फिर क्या करें, 2 मिनट बैठ जाइए शांत, आज दिन भर जो भी कर्म करूंगा तुझे प्रसन्न हूं करने के कर्म करूंगा, आज ऊंचा लक्ष्य बनाऊंगा, ऊंचे भाव बनाऊंगा और तेरे ही घर में रहता हूं, तेरी सृष्टि में रहता हूं, तेरे घर में रहता हूं, तेरा अन्न खाता हूं, तेरे तन में रहता हूं और मैं तेरा हूं, तू मेरा है, ऐसा विचार करके अपना जीवन का दृष्टिकोण बदल। कल सुबह से शुरुआत करने की जो हां बोलते हैं वो हाथ ऊपर करें, कल सुबह से ही शुरुआत, बहुत बड़ी हां कथा वसूल, मंडप के पैसे आज ही वसूल हो गए। नारायण हरि, नारायण हरि, बोलो ना नारायण हरि, नारायण हरि। जो कथा सुनने आते, एक एक कदम चल के आते, एक एक यज्ञ करने का फल होता है। समझदारों का कहना है नाभि से कंधे तक की सूक्ष्म 72,000 नाड़ियां हैं, उससे भी कई नाड़ियां और भी सूक्ष्मतम है। वो नाड़ियां न पानी से शुद्ध होती है, न साबुन से शुद्ध होती है, न टीनोपोल से होती है, न धूप धुएं से होती है, न अगरबत्ती से होती है। उन नाड़ियों की शुद्धि के लिए केवल हास्य ही है मनुष्य को। इसलिए आप दिन में एक आध घंटा हास्य रखिए, दो 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 चार चार मिनट हास्य करते जाइए। जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति है, हंसता है, वो रोगों को तो दूर भगाता है, मन की मूंज को भी दूर भगाता है, बुद्धि को प्रफुल्लित करता है और व्यवहार में भी सफल होता है। जिसका हसमुख स्वभाव है वो दुकानदारी में भी सफल होता है, सेल्समैनी में भी सफल होता है, ऑफिस में भी सफल होता है और स्वास्थ्य में भी सफल होता है। जो रोता रहता है, अरे भाई रोता क्यों है, बोले बाबा जी शिकल ही ऐसी है, हद कर दी यार तूने, फिकर फेंक कुएं में जो होगा देखा जाएगा, शिकल ऐसी क्यों। मियां जी दुबले क्यों है, बोले सारे गांव की फिकर है। अरे बेवकूफ, गांव वाले तो मजे से घूम रहे हैं, तू गांव की फिकर क्यों करे यार। काहू डोलत प्राणिया तद राखे गो सर्जन हार, जिन पाई मेदनी सोई कर दासार, सहस स्याण पा लख होए त एक न चले ना। छोरी के विवाह शादी की चिंता है, फिकर फेंक, ईश्वर की छोरी है, तू केवल कोशिश कर, फिर देख कैसे चमत्कार होता है। छोरे की चिंता है, ईश्वर को अर्पण कर दे, जो अपने हैं वो तो ईश्वर के कर दे, और जो पराए लगते उनको अपना मानने की अगर खूब आपको ख्वाहिश है तो जो पराए हैं उनको अपना मान और जो अपने हैं उसको ईश्वर का मान, फिर भी तुम्हारे जीवन में कल्याण का रास्ता खुल जाएगा। ये महाराज ये तो आइडिया बिल्कुल नई नई है महाराज, बढ़िया लगता, अच्छा तो लगता है। कबीर को लोगों ने पूछा कि हम इतने सारे मिल मिलाकर उपदेश देते हैं और लेक्चर करते हैं, तो हमारे उपदेश में कुछ लोग आते चले जाते और तुम अकेले और हमारे सबसे ज्यादा तुम्हारी ग्राहकी कैसे होती। कबीर बोलते कि आप प्रभाव डालने के लिए बोलते हैं, एक बोलता है तो दूसरा साधु उसकी काटता है, आप अपने मैं को लेकर बोलते हैं, मैं अपनी मैं को उसके चरणों में रखकर फिर बुलवाता है, वो बोलता हूं इसलिए मेरे से लोगों को लाभ होता है। जय राम जी की। नानक बोले सहज स्वभाव, हर मनुष्य प्रभाव डालने की कोशिश करता है लेकिन स्थायी प्रभाव उन्हीं का रहता है जो स्थायी तत्व जिसका है उसी के बनकर उसी की प्रसन्नता के लिए बोलते हैं, उनका स्थायी प्रभाव रह जाता है। तुकाराम का प्रभाव महाराष्ट्र में स्थायी है, नानक जी का प्रभाव पंजाब में स्थायी है, लेकिन विश्वभर में भी इन संतों का प्रभाव तो है। हिटलर ने भी प्रभाव डालना चाहा, सिकंदर ने भी डाला, रावण ने भी अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की, लेकिन अपने मैं में आकर इस मरने वाले शरीर को मैं मानकर प्रभाव जमाने की कोशिश की, और राम ने अपने वास्तविक मैं में विश्रांति पाकर दूसरों की उन्नति की कोशिश की, इसलिए राम का प्रभाव अमिट है और रावण का प्रभाव अटिक है, टिका नहीं। हर मनुष्य अपने वक्त का एक तिहाई खाने पीने कमाने में लगाता है, दो तिहाई दूसरे पर प्रभाव छोड़ने की कोशिश में लगा है। यहां तक साधु संत या उपदेशक की बात नहीं है, सेल्समैन और घर गृहस्थियों की बात नहीं, जेल में बैठे हुए कैदी भी जेल में भी एक दूसरे पर प्रभाव छोड़ने की कोशिश करते। मैंने सुना है कि एक कैदी का दरवाजा खोला गया और दूसरे कैदी को अंदर रखा गया, तो पुराना कैदी बोलता है अबे कितने साल की सजा है, बोले 6 महीने की सजा है, बोले फिर अंदर क्या रखता है, बरामदे में कबाड़ बिछा दे आसन, तेरे को पता नहीं इधर 20 साल वाले मर्द बैठे हैं, छोरा कोई क्या करके आया, हम तो दो दो खून करके आया, तू क्या करके आया, एक आधी टांग तोड़ी होगी और क्या, सिखर है सिखर, वही बिस्तर लगा। सजा भोगने का भी प्रभाव दिखाते, और तो क्या, ऑटो रिक्शा वाला अपने मोहल्ले में जाएगा तो धत्तड़ वो तेरा बाप कोई आगे आदमी नहीं है, फिर भी ये भी प्रभाव दिखाने का एक चाल है। और अपने छोरे बच्चे यूं तो चलाते जाएंगे लेकिन जब पड़ोस से गली से घूंजी से निकलेंगे और पहचान वाले को देखेंगे तो घंटी ऐसी बजेंगे टन 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 वहां किसान भी अपनी मूछे को जरा स्वादिष्ट कर देगा और बैलगाड़ी को बजाएगा, बैल के पूछे को मरेगा और वहां प्रभाव दिखाएगा। इतना ही नहीं, आप जब पूजा पाठ करते अकेले में तो 2-5-10 मिनट में वो पूजा पाठ पूरा हो जाएगा। अगर कोई गेस्ट आकर खड़ा है और धार्मिक है तो आपकी पूजा पाठ बढ़ जाएगा ताकि उस पर थोड़ी असर पड़ जाए। इतना ही नहीं भैया, आप बस स्टैंड पे खड़े हैं और भिखमंगे ने मांगा, चल अगर उसको भगाना है तो आपने उठाकर 10 पैसे दे दी, आपके साथ अपना संबंधी खड़ा है तो आप दुखी मन होते हुए भी मुस्कुराता चला, ले भाई ले तू भी मौज कर, बड़े दाता बन जाओगे। क्यों? ये संबंधी खड़ा है, इंप्रेशन क्रिएट करेंगे। और भिखमंगे भी जानते हैं कि आप अकेले हैं तो वो ज्यादा नहीं खड़े रहते, अगर देखते कि आपके साथ गेस्ट है तो भिखमंगे भी जानते कि ये मौका ठीक जगह पे, जहां लाल बत्ती हो जाती, लाल लाइट होती है और गाड़ियां खड़ी रहती है, वहां क्या करते भिखमंगे? यूं आके भीख मांगे तो आप कांच बंद कर देंगे, लेकिन वो थोड़ा आपके प्रभाव को पोसता है, आपकी गाड़ी के कांच पर जरा कपड़ा घुमा देता है, एक दो सलाम मार देता है, आपके प्रभाव को गुदगुदी करता है, चल बच्चा ले जा रुपया दे डाला, जयराम जी की। आप एक तिहाई भी खर्च नहीं करते खाने पीने और जीने के लिए, दो तिहाइयां आप केवल अपने प्रभाव को डेवलप करने के लिए, अपना प्रभाव छोड़ने के लिए खर्च करते हैं, फिर भी इतना प्रभाव नहीं टिकता। अपना छोरा ही अपनी अवज्ञा कर लेता है, अपनी पत्नी अपनी अवज्ञा कर लेती है, अपना प्रा अपनी अवज्ञा कर लेता है, अपना नौकर अपने को मन में गालियां देने लगता है, क्योंकि जिसका प्रभाव नहीं उस देह के अहम में आकर आप प्रभाव छोड़ना चाहते, और जिसका प्रभाव अमिट है उस यार को आप भूले हैं, इसलिए ऐसा हो जाता है। बोले बाबा अब ये बात तो सच्ची लगी सारी, तो हम लोग क्या करें कि हमारा जरा हम क्या करें? आप सुबह उठकर उसके साथ अपना जो सनातन संबंध है उसको स्मरण करो। ईश्वर के साथ आपका पक्का संबंध है और शरीर के साथ आपका कच्चा संबंध है। ये गुलाब के फूलों की माला 8 दिन पहले ऐसी नहीं थी, 8 दिन पहले नहीं थी, 8 दिन के बाद भी नहीं रहेगी, अभी भी नहीं के तरफ जा रही है, और 5 मिनट पहले ऐसी नहीं थी। जयराम जी ठीक क्या? देखो हम भी प्रभाव छोड़ रहे हैं, हम भी माला चढ़ा के प्रभाव जमा रहे हैं, देखा जयराम जी की वो कैसे लग दे ना, है बैठो हम भी कुछ। हाँ अभी नहीं, 8 दिन पहले ये फूल नहीं थे, 2 घंटा पहले जिसकी माला थी वो समझता है मेरी माला है, अभी मैं कहता हूं ये मेरी माला है, 6 घंटे पहले माली बोलता है मेरी माला है, और 2 दिन पहले किसान बोलता है मेरा माल है, और 4 दिन पहले ये माल छुपाता 5 भूतों में, पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में, अब वहां से आया, अब जा भी वही रहा है, इसका जल जल कणों में जा रहा है बाष्पीभूत, इसकी गंध गंध में जा रही है, जहां से उपजा वहीं जा रहा है, लेकिन भ्रांति है। किसान बोलता है मेरा माल है, माली बोलता है मेरा माल है, आपने खरीदा आप बोलते मेरा हार है, अब मेरे पास है, मुझे भ्रांति हो गई, ये मेरा माल है, लेकिन वास्तव में जो जिसका है वहीं जा रहा है। ऐसे बच्चा पैदा होता है, माँ बोलती मेरा बेटा है, नानी बोलती मेरा दोता है, दादी बोलती मेरा पोता है, बाप बोलता मेरा पुत्र है, काका बोलता मेरा भतीजा है, मामा बोलता मेरा पांजा है, पत्नी बोलती मेरा पति है, लेकिन वो जा कहां रहा है? बेटे बोलते मेरा बाप है, जवाई बोलता मेरा ससुर है, दोता बोलता मेरा नाना है, लेकिन वो जा कहां रहा है? जिस 5 भूतों से उसका शरीर पैदा हुआ उसी में तो जा रहा है। जैसे जलते बुलबुला उपजे बिन से नीत, जग रचना तैसी रची जान ढेरे मीत। तो ये आपका शरीर 5 भूतों से पैदा हुआ, 5 भूतों में जी रहा है, 5 भूतों में लीन होगा, लेकिन 5 भूतों की गहराई में जिस चैतन्य रब की ताकत है, जिसकी सत्ता से धरती में से बीज फूट निकलते हैं, जिसकी सत्ता से जल में स्वाद आता है, जिसकी सत्ता से सूर्य में प्रकाश है, जिसकी सत्ता से आपके दिल धड़कने ले रही है, जिसकी सत्ता से आपका सुख भी चला जाता है, दुख भी चला जाता है, लेकिन जिसकी सत्ता से आप देख रहे हैं वो रब साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। उस सदा हजूर के साथ सुबह तालमेल करिए, एक हाथ अपना और एक हाथ रब दा, है तो दोनों लेकिन एक हाथ की बेईमानी चल जाएगी। बायां हाथ मेरा और दाया हाथ मेरे रब दा, और सुबह सुबह हाथ मिलाओ रब के साथ आ। और वो रब का हाथ है तो उसमें ताकत भी ज्यादा होगी दाएं हाथ में, वो हाथ मिलाएगा जरा सा मचल दो तुम्हारी शक्ति अपरंपार है कुछ भी नहीं कोई बात नहीं और भी एक बार ठीक है, भले थोड़ी पीड़ा हुई शरीर को लेकिन तेरे साथ मेरा संबंध तो हो गया, आज मैं रब से हाथ मिलाकर फिर धरती पे पैर रखूं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, आपके भाव को ऊंचा कर दो। दो साधु थे, एक मुसलमान और एक हिंदू, यात्रा कर रहे थे, कहीं खाने को नहीं मिला, दोनों ने मन का भोजन बनाया। वो सन्यासी ने तो लड्डू बनाए, पूरी पकोड़े नहीं, लड्डू बनाए, खीर मालपुए बनाए, मन ही मन से खाए और लेट गए। और दूसरे ने बनाई कढ़ी, कढ़ी खिचड़ी पर सिसक रहा। सन्यासी ने पूछा, मुल्ला क्यों सिसक रहे हैं? बोले, यार कढ़ी में मिर्ची बहुत है। बोले, कहाँ है? बोले, मन की बनाई थी। बोले, बेवकूफ, कहीं का मन के ही खाना तो लड्डू क्यों नहीं बनाना, काहे को मिर्च वाली कढ़ी खाना? मन का ही भोजन बनाना तो घी का क्यों ना बनाना, काहे को डालडे में मरना? जब मन के भावों से ही तुम उन्नत हो सकते हो और पतित हो सकते हो, मन के भावों से ही तुम सफल और विफल हो सकते हो, मन के भावों से ही तुम निरोगी और रोगी हो सकते हो, तो मन के भावों को आप उन्नत क्यों नहीं करते? घर की खेती है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। भावो ही विद्यते देवो न लोष्टे काष्टे पाषाणे च, भाव ही तो देव है। लोह का या काष्ट का या पत्थर का भगवान वो भगवान नहीं है, और ताड़ा भाव ही भगवान उत्पन्न करता है। 1983 में दिल्ली के अखबारों में छपा था, मैं आपको सुना ही देता हूं। एक पैडल रिक्शा वाला किसी खड़िया पलटन बाबा को रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डे ले जा रहा था, हरिद्वार जाना था उस बाबा को। पैडल रिक्शा वाले ने कहा, बाबा जी चाहे किराया 1 रुपया कम दे दो, लेकिन मेरे को आशीर्वाद दो, मेरे को रोजी में बरकत पड़े। बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, सारा दिन पैडल रिक्शा चला चला के थक गया हूँ। बाबा मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मेरे को ऑटो मिल जाए, आशीर्वाद दो। बाबा भी किसी को चेताकर ट्रांजिस्टर रेडियो ले आया था, किसी भक्तों को पटाकर, और किसी को टूना फूना टोटका आदि ताविज बाविज देके कुछ रुपए पैसे भी ला रहा था, सिगरेट भी पी रहा था। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जिसका रेडियो था उसके यहां कोई किताब बिताब भी थी, उसने भी दे दी, और किताब में कोई फोटो पड़ा था। बाबा ने उठाकर वो फोटो रिक्शा वाले को दे दिया, ले ये माता जी का फोटो, पूजा करना बरकत पड़ेगी। रिक्शा वाला माता जी के फोटो के आगे रोज आंखें मूंदे, माँ धंधे में बरकत दे, हे मेरी सच्ची माता जी धंधे में बरकत कर दे। जाने अनजाने वो थोड़ा शांत हो जाता, मत्था टेकता, धंधे पे जाता, धीरे धीरे उसको बरकत होने लगी। थोड़ा बैंक का लोन थोड़ा इधर उधर करके वो तो ऑटो ले ही आया, और फिर ऑटो की कमाई से उसने लोन भरपाई कर दिया, गाड़ी अपनी फ्री कर दी। यारों ने पूछा कि हम तो पैदल रिक्शा घसीटते घसीटते मर गए, तेरे पास ये जादू कैसे हुआ? बोले, मेरे पर एक बाबा की रहमत थी, बाबा ने मेरे को माता जी का फोटो दिया, देवी का, और देवी की सारी करामत है। कहाँ है देवी, हम भी पूजेंगे? बोले, उस देवी का फोटो मेरे घर में है, जब से मैंने घर में देवी की स्थापना की है तब से मेरा सब चार चांद हो गए, मेरा भाग्य। और रिक्शा वाले तो होते हैं, चलो भाई दिखा तेरी देवी माता। तो रिक्शा वाले जो पैडल रिक्शा वाले थे वो पिक्चर के शौकीन थे, हर एक्ट्रेस का नाम जानते थे, उसकी करतूतें जानते थे थोड़ी बहुत। और ये बेचारा भोला भाला था, वो घर में आए तो देखते जिसको वो रिक्शा वाला बोलता है साधु ने देवी का फोटो दिया है। एक बार में छपी हुई बात बता रहा हूं आपको, दिल्ली में। वो जब पैदल रिक्शा वाला अपने और रिक्शा वाले को ले आया है, और उन्होंने देखा कि तू मालदार क्यों हुआ? बोले, ये देवी माता ने किया। तो देवी माता का फोटो देखा तो दूसरे रिक्शा वाले गाली बोलने लगे, अरे बोले ये देवी माता, ये तो हेमा मालिनी है। हेमा मालिनी का फोटो था, लेकिन उसके भाव ने देवी भाव किया, मन शांत रहा तो उस अंतर्यामी देव की रहमत हो गई। वैष्णो देवी जहां तप करती थी वहां कोई अघोरी विचार का साधु था, मुझे थोड़ा शराब दिलवा दे, मुझे मांस दिलवा दे, ये कर दे। उससे उपकर बहुत दूर ऊंचे पहाड़ पर जाकर उसने भजन किया और ऊंचे पहाड़ पर भजन किया। धीरे धीरे कोई कभी कभार गया, जो साधु साध्वी रहते तो लोग जाते, ऐसे करते 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 मांसाहारी नहीं थी, वैष्णवी थी, वैष्णव संप्रदाय की थी। वैष्णो देवी वैष्णो देवी वैष्णो देवी उसकी आयाती में तो थोड़ा बहुत चला, अब तो चल पड़ा तो गड्ढा हो, फिल्म विलम हुई, जाए वैष्णो देवी माता। हम उससे नाराज नहीं है, ठीक है, और जगह जाने की अपेक्षा उधर जाते अच्छा है। लेकिन सीढ़ियां चढ़ते 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 हाँफते सांस लेते बहुत मेहनत के बाद वो गुफा में से यूं घुस के जम जान, हा माता का दर्शन होया। वहां से 54-58 रुपया 2 पैसा पैसा मिला और फिर बरकत होगी हो जानी बरकत। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैं वहां एकांत के लिए गया अभी 2-4 महीने पहले, तो वहां के अधिकारियों को दूसरों को पता चला, तो ATN में तो उन्होंने प्रोग्राम देख रखा GTV, तो मेरे को बुलाया कि आप बापू माता जी के दर्शन करने चलो। मैं क्यों कहूं कि नहीं आऊंगा, और मैं क्यों कहूं कि अभी चलता हूं, मैं क्या मैं अपने ढंग से दर्शन कर लूंगा। वैसे तो हमारे दर्शन दर्शन ही है, अदर्शन कभी हुआ नहीं हमारा, लेकिन फिर भी हम कभी राउंड मारेंगे देखने के लिए। तो हम चुपचाप गए, लेकिन अधिकारियों को पता चल गया, उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी हमारे लिए VIP ट्रीटमेंट, कहीं कमरे खुलवा दिए, कहीं कुछ VIP में दर्शन करने का। फिर वहाँ के जो ऑफिसर है वो मेरे को पैर पड़ने लगे, बाबा जी इतने साल हो गया नौकरी करते हैं लेकिन अपनी घर का मकान नहीं हुआ। मैं क्या, जो दूर से आते मनोती मानते उनके मकान बन जाते, तोड़े क्यों नहीं बने यार। जो पिट्ठू लोग 40 रुपए में दिन भर वहां माता जी के यहाँ जाने आने वाले का सामान उठाते, वो ऐसे कैसे क्यों। मानना पड़ता है भावो ही विद्यते देवो हो, जब भाव में ही तुम्हारा देवत्व तो पैदा हो सकता है जगता है, तो आप तो भाव के धनी हैं। जय राम जी की। आप अपना भगवत भाव बनाइए, आप अपने प्रसन्नता का भाव बनाइए, आप अपना ईश्वर का सनातन अंश है ऐसा भाव बनाइए। बिल्कुल सच्ची बात, शरीर आपका नहीं है, आपका शरीर होता तो आपके कहने में चलता, शरीर आप नहीं है, शरीर मर जाता है फिर भी आप रहते हैं, और शरीर नहीं पैदा हुआ था तभी भी आप थे, और आपका कर्म था स्वभाव था, उसलिए एक ही माँ के 3 बेटे तीनों का स्वभाव अलग अलग दिखता है, क्योंकि आप थे अलग अलग। माता पिता वही के वही, घर वही का वही, हवामान वही का वही, लेकिन 5 बच्चों के स्वभाव में डिफरेंस दिखता है, क्योंकि आप डिफरेंस थे पहले। तो ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी, ब्रह्मज्ञानी अनाथों का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ये ब्रह्मज्ञान के जितने जितने प्रसाद के घूंट आप भरोगे उतना उतना आपका जीवन धन्य रहेगा। तो सुबह ये 4 काम करने हैं, एक तो शरीर को खींचना, दूसरा ढीला छोड़ना, तीसरा क्या प्रॉब्लम है उस पर सिंहावलोक करना, और चौथा जोर से हंसना। ये तो आप कर सकते हैं। फिर दिन में 1-1.5 घंटा बीते और 2 मिनट रेस्ट करिए। शरीर से जो काम हुआ भगवान की सृष्टि में, भगवान के शरीर से जो काम अच्छा हुआ भगवान की कृपा हो, कहीं गड़बड़ हुई तो मेरी वासना है, लेकिन तेरी सत्ता से सारा काम हुआ, मैं तेरा तू मेरा। 1-2 घंटे में 1-2 मिनट आप रेस्ट करके गोता मारिए, आपका व्यवहार थोड़े ही दिन में भजन बन जाएगा और आपका हृदय भगवान का द्वार बन जाएगा, द्वारिका बन जाएगा।